लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, गाजा पट्टी में युद्ध के कारण दरकती स्वास्थ्य सेवाओं और आम फिलिस्तीनियों के लिए उपचार व देखभाल की बदहाल व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शुक्रवार को एक आपात बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि ने परिषद के सदस्य देशों को वहां मौजूदा हालात से अवगत कराते हुए चिंता जताई कि स्वास्थ्य केंद्र युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुके हैं। काबिज फिलिस्तीनी इलाके में जीवन के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल, आपात सहायता और मानवीय सहायता मार्ग सुलभता को व्यवस्थित ढंग से तार तार कर दिया जा रहा है और वहां भुखमरी आसमान छू रही है। 90% से अधिक आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2025 में सुरक्षा परिषद की यह पहली बैठक है, जिसे जनवरी महीने के लिए अध्यक्ष देश अल्जीरिया द्वारा बुलाया गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
मानवाधिकार मामलों के लिए उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा कि गाजा में दुनिया की आंखों के सामने मानवाधिकारों के लिए विनाशकारी स्थिति बनी हुई है। गाजा के 36 अस्पतालों में से केवल 16 में ही आंशिक तौर पर कामकाज हो रहा है। 1000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी हिंसक टकराव में मारे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक अस्पताल पर इजरायली सैनिकों के हमलों के बाद कुछ मरीजों और कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें वहां से जबरन बाहर निकाला गया। उसके बाद से ही अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क कह रहे थे कि गाजा में अस्पतालों की बर्बादी फलस्तीनियों को उनके स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार से वंचित रखने से कहीं आगे बढ़कर एक चिंताजनक बात है। ये स्वास्थ्य केंद्र उन हजारों लोगों के लिए एक शरण स्थल भी थे जिनके पास भागने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध के दौरान अस्पतालों की रक्षा की जानी अहम है और इसका सदैव हर पक्ष द्वारा सम्मान किया जाना होगा। गाजा और पश्चिमी तट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रिक पेपरकॉर्न ने बताया कि अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक गाजा की करीब 7% आबादी युद्ध में हताहत हो चुकी है। हिंसा में घायल हुए 1,00,000 से अधिक फलस्तीनियों में से करीब 25% जीवन को बदल कर रख देने वाली शारीरिक अवस्था और चोट का सामना कर रहे हैं। डॉक्टर पेपरकॉर्न ने चेतावनी दी है कि बेहतर इलाज के लिए 12,000 से अधिक लोगों को विदेश भेजे जाने की आवश्यकता है, मगर ये प्रयास बेहद सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर अब तक 654 हमलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं।
यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि युद्ध प्रभावित इलाकों में आम नागरिक बेहद पीड़ा में हैं। युद्ध बंदियों के साथ कठोर बर्ताव किया जा रहा है। वहीं रूसी सैन्य बल यूक्रेन के काबिज इलाकों में अपना नियंत्रण मजबूत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में सितंबर से नवंबर की अवधि के दौरान घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर जानबूझकर किए गए हमलों और बुनियादी अधिकार पर पाबंदी लगाने समेत अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
इस रिपोर्ट में सितंबर से नवंबर 2024 के दौरान हिंसा में हताहत होने वाले लोगों के 93% से अधिक मामले सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों में है, विशेष रूप से दोनेस्क, खार्किव, खेरसों समेत अन्य इलाके जहां भीषण सैन्य टकराव है। रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे पर अपने हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। इससे सर्दी के मौसम में यूक्रेन की ऊर्जा क्षमता पर गहरा असर हुआ है। बिजली व जल आपूर्ति, तापन और परिवहन व्यवस्था में व्यवधान आया है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध बंदियों को यातना दिए जाने, उन्हें जान से मारे जाने समेत बुरे बर्ताव के अन्य मामले भी सामने आए हैं। हाल ही में रिहा किए गए यूक्रेन के 42 युद्ध बंदियों से बातचीत की गई, जिनमें 11 महिलाएं थी। उन्होंने पिटाई, बिजली के झटके, लंबे समय तक एकांत कारावास में रखे जाने समेत यातना दिए जाने के अन्य मामलों को साझा किया। महिलाओं और पुरुषों के विरुद्ध यौन हिंसा के मामलों को भी अंजाम दिए जाने की बात कही गई है। रिपोर्ट बताती है कि रूसी युद्ध बंदियों के साथ भी यूक्रेनी प्रशासन द्वारा बुरा बर्ताव किए जाने की घटनाएं हुई हैं, हालांकि यूक्रेनी बंदियों की तुलना में ये मामले अपेक्षाकृत कम हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य देशों ने 1 जनवरी को अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है। 15 सदस्य देशों वाली सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। इसके साथ ही इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की 2 वर्ष की अस्थायी सदस्यता की अवधि समाप्त हो गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
गुरुवार को सुरक्षा परिषद कक्ष के बाहर एक विशेष समारोह में वर्ष 2025 और 26 के लिए शामिल हुए देशों के ध्वज लगाए गए। इन 5 अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव पिछले वर्ष जून में यूएन महासभा में मतदान के जरिए हुआ था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 15 सदस्य देशों वाली सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को कायम रखना है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर इसके फैसलों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी है। इसके 5 स्थायी सदस्य देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी महासंघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, जिनके पास वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देशों के लिए हर वर्ष 193 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के जरिए चुनाव होता है, जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी ख्याल रखा जाता है और ये अस्थायी सदस्यता पाने के लिए देशों को कम से कम 2/3 मत हासिल करने की जरूरत होती है, जिनकी संख्या 128 है। अल्जीरिया जनवरी महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। अल्जीरिया के राजदूत अमर बेंदी जमा ने 2 साल की अपनी सदस्यता की अवधि समाप्त करने वाले देशों का आभार प्रकट किया और नए अस्थायी सदस्यों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने साथ ही आगाह भी किया कि दुनिया अनेक चुनौतियों से जूझ रही है, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा है। मध्य पूर्व में हालात बेहद चिंताजनक हैं। अल्जीरियाई राजदूत ने सदस्य देशों से बहुपक्षवाद के मूल्यों को सर्वोपरि रखने के लिए अथक व कारगर प्रयास करने का आग्रह भी किया।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त श्री वोल्कर टर्क ने अफगानिस्तान में अफगान महिलाओं को रोजगार देने वाले गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द किए जाने के निर्णय पर चिंता जताई है और उसे वापस लिए जाने की अपील की है। विदित हो कि तालिबान प्रशासन ने कुछ ही दिनों पहले 2 वर्ष पुराने अपने आधिकारिक आदेश को अमल में लाने की घोषणा की थी, जिसमें अफगान महिलाओं के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों में काम करने पर पाबंद लगाई गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने मंगलवार को जारी अपने वक्तव्य में कहा कि इस आदेश का अफगानिस्तान में जरूरतमंद आबादी तक मानवीय सहायता प्रयासों पर गहरा असर पड़ेगा। अफगानिस्तान में आधी से अधिक आबादी निर्धनता में जीवन गुजार रही है और विशाल संख्या में लोग मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। OHCHR प्रमुख ने ध्यान दिलाया कि अफगानिस्तान में लाखों लोगों की गुजर बसर में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो महिलाओं, पुरुषों व बच्चों तक जीवन रक्षक मदद पहुंचा रहे हैं। उन्होंने क्षोभ जताया कि यह पूरी तरह से गलत रास्ता है और बेहद भेदभावपूर्ण आधिकारिक आदेश है। यूएन कार्यालय ने चिंता जताई है कि गैर सरकारी संगठनों में अफगान महिलाओं के कामकाज पर रोक लगाने वाले आदेश से महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से मिटा दिया जाएगा, जिससे देश की प्रगति प्रभावित होगी। वोल्कर टर्क ने जोर देकर कहा कि कोई भी देश राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी आबादी को सार्वजनिक जीवन से बाहर रखा जाएगा।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
सुहाना दिन आया यहाँ लेके सुरों का गीत, छाया जहाँ खुशियों में आज न होता ऐसा कभी, छाई है रंगी बहार खुशियों में आज न होता ऐसा कभी।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को वाटिकन में फ्रांस से आए वैश्विक शैक्षिक संधि से प्रेरित इकोल्स डे वी परियोजना के प्रवर्तकों का हार्दिक स्वागत किया। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार और कलीसिया की सामाजिक शिक्षा पर केंद्रित उनकी निर्माण परियोजना एक मौलिक सत्य को उजागर करती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना भी नाजुक क्यों न हो, एक आंतरिक मूल्य का वाहक है और हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय और अपूर्णीय व्यक्ति के रूप में पहचानने के लिए कहा जाता है। संत पापा ने कहा कि प्रत्येक मानव जीवन में एक अविभाज्य गरिमा होती है। कोई भी बेकार नहीं है, कोई भी अयोग्य नहीं है। प्रत्येक अस्तित्व ईश्वर की ओर से एक उपहार है जिसका प्यार और सम्मान के साथ स्वागत किया जाना चाहिए। संत पापा ने प्रतिबद्धता के साथ इसकी घोषणा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा कि वे हर किसी की उसके कमजोरी के साथ स्वागत करके और रिश्ते बनाकर उस मिलनसार कलीसिया का प्रतीक बन जाते हैं जिसकी वे अक्सर आशा करते हैं। एक खुली एवं स्वागत करने वाली कलीसिया जो हर किसी के करीब आने में सक्षम है और जो लोग पीड़ित हैं कोमलता के साथ उनके घावों को भरने में सक्षम है, दुलार करने में सक्षम है, जो स्नेह से वंचित हैं और जो जमीन पर गिर गए हैं उन्हें उठाने के लिए। संत पापा ने कहा कि केवल एक ही स्थिति में किसी व्यक्ति को नीचे देखना जायज है, उसे उठाने में मदद करने की स्थिति में। संत पापा ने आशा के इस जयंती वर्ष में उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा कि केवल मानव व्यक्ति को केंद्रीयता प्रदान करके उनके आध्यात्मिक आयामों को एकीकृत करके ही हम एक सच्चे न्यायपूर्ण और सहायक समाज का निर्माण करने में सक्षम होंगे। आपकी पहल इस आकांक्षा का एक ठोस प्रत्युत्तर है। यह विकलांगता और दुर्बलता के कारण हाशिए पर पड़े लोगों को एक भाईचारे और आनंदमय समुदाय में उनका स्थान पुनः दिलाती है। आपकी प्रतिबद्धता सबसे कमजोर लोगों के पक्ष में अन्य पहलों को प्रेरित करेगी और आपकी कार्यवाही समग्र शिक्षा की संभावनाओं को खोलेगी जिसकी युवा पीढ़ी को तत्काल आवश्यकता है। और पोलैंड के वोक्रला में ऑन्कोलॉजी और पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी क्लिनिक में उपचार प्राप्त करने वाले युवा रोगियों का वाटिकन में संत पापा फ्रांसिस ने अभिवादन किया। संत पापा ने 2025 की जयंती के संदर्भ में उनसे बातें की। इसे एक ऐसा वर्ष कहा जिसमें ईश्वर हमें विशेष अनुग्रह प्रदान करना चाहते हैं। संत पापा ने समूह को चुनौती देते हुए कहा, हमारे पास एक दूसरे को आशा और प्रेम देने का अवसर है। उन्होंने बैठक से पहले खुशी महसूस करने के कारणों में से एक कारण यह बताया कि बच्चे और युवा लोग उनके लिए आशा के संकेत हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु उनमें से प्रत्येक में मौजूद हैं। और जहाँ वे हैं वहाँ आशा है जो कभी निराश नहीं करती। अपने स्वयं के कष्टों के माध्यम से हम यीशु के साथ जुड़ सकते हैं जिन्होंने क्रूस पर हमारे लिए स्वेच्छा से कष्ट सहे। संत पापा फ्रांसिस ने इसे दोस्ती की परीक्षा कहा क्योंकि लोग सच्चे मित्र तब होते हैं जब दूसरे का आनंद भी मेरा आनंद होता है और दूसरे का दर्द भी मेरा दर्द होता है। संत पापा ने बच्चों और युवाओं को याद दिलाया कि उनके लिए यीशु का प्रेम का एक और संकेत उनके आसपास लोगों में देखा जा सकता है। आपके माता पिता का प्यार और निरंतर उपस्थिति, डॉक्टरों, नर्सों और फिजियोथेरापिस्टों की करुणामय और कोमल मुस्कान जो आपकी देखभाल करते हैं और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, इन सभी का लक्ष्य इन बच्चों को उनकी आशा और सपनों को जीने में मदद करना है। संत पापा ने जोर देकर कहा कि वे यीशु के दृष्टिकोण को साझा करते हैं, समूह को अपना मित्र कहते हैं। उन्होंने उन्हें संत पापा के लिए अपनी प्रार्थनाएं और कष्ट देकर कलीसिया की सेवा करने की चुनौती दी। संत पापा ने उन्हें उन बच्चों के लिए प्रार्थना करने में शामिल होने के लिए कहा दुर्भाग्य से जिनके पास देखभाल प्राप्त करने की संभावना नहीं है। आज 10 जनवरी को जॉर्डन में यीशु के बपतिस्मा स्थल पर नए गिरजा घर के अभिषेक मिसा समारोह के दौरान कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने कहा कि यह अवसर ख्रिस्तियों को एक प्रमाणिक आध्यात्मिक नवीनीकरण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और मध्य पूर्व के ख्रिस्तियों को आश्वस्त करता है कि विश्वव्यापी कलीसिया उनके करीब है। बाइबल की इतनी सारी घटनाएं और आकृतियां यहाँ मिलती हैं। हम कह सकते हैं कि यह स्थान पुराने नियम की संपूर्ण अपेक्षा को समाहित करता है जो मसीह के आगमन पिता के प्रकटीकरण के लिए निर्देशित है। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने जॉर्डन नदी पर प्रभु के बपतिस्मा स्थल अल मघतास पर यह अवलोकन किया। नए गिरजाघर के लंबे समय से प्रतीक्षित अभिषेक मिसा समारोह के दौरान अपने प्रवचन में कार्डिनल ने याद किया कि यह लंबे समय से तीर्थ यात्रा का स्थान रहा है क्योंकि यह वही स्थान है जहां संत योहान बपतिस्ता ने यीशु को बपतिस्मा दिया था। उन्होंने कहा कि संत पापा की इच्छा के अनुसार आज यहां मेरी उपस्थिति मध्य पूर्व के ख्रिस्तीय समुदायों के साथ पूरी कलीसिया की निकटता का एक ठोस संकेत है। विशेष रूप से संत पापा के शब्दों में इस निकटता ने कई महीनों के कष्ट और युद्ध के दौरान कई अभिव्यक्तियां पाई हैं। कार्डिनल पारोलिन ने शाही परिवार, विशेष रूप से राजा अब्दुल्ला द्वितीय और जॉर्डन सरकार के लिए संत पापा फ्रांसिस की प्रशंसा व्यक्त की कि 1990 के दशक में फादर मिशेल पिकिरिल्लो द्वारा इस पवित्र स्थान की पहचान किए जाने के समय से ही उन्होंने विशेष देखभाल की है। कार्डिनल पारोलिन ने श्री नादिम मुआशर के प्रति भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस गिरजाघर के निर्माण में योगदान दिया जिसकी आधारशिला संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने 2009 में पवित्र भूमि की अपनी यात्रा के दौरान रखी थी और दिव्य वचन धर्म समाज के पुरोहितों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त किया जो प्रेरितिक देखभाल प्रदान करते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।